नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। समाचार चैनल एनडीटीवी का शेयर बुधवार को शुरुआती कारोबार में 5% चढ़ने के बाद अपर सर्किट कोच हो गया। अडानी ग्रुप के हिस्सेदारी खरीदने के बाद एनडीटीवी के शेयर में ये वृद्धि हुई है। कंपनी का शेयर बीएससी सेंसेक्स में शुरुआती कारोबार के दौरान 5% बढ़कर 384.50 रुपए पर पहुंच गया, जो इसकी अपर सर्किट सीमा होने के साथ पिछले 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर है। वहीं एनएससी पर भी कंपनी का शेयर 4.99% उछलकर 388.20 रुपए पर पहुंच गया, जो इसकी अपर सर्किट सीमा और 1 साल का उच्चतर स्तर है। प्रणय और राधिका रॉय की एक बड़ी हिस्सेदारी वाली टीवी चैनल को अडानी ग्रुप खरीदने जा रहा है। अडानी ग्रुप की अगुवाई वाले अडानी ग्रुप की मीडिया कंपनी ने 23 अगस्त को एनडीटीवी की 29.18% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया। ये हिस्सेदारी अभी अप्रत्यक्ष रूप से खरीदी गई है। अडानी समूह की कंपनी ने उस कंपनी से ये हिस्सेदारी ली है जिसके पास एनडीटीवी के शेयर थे। अब अडानी समूह सीधे तौर पर एनडीटीवी में 26% हिस्सेदारी भी खरीदेगा। इसके बाद कंपनी में 55% से ज्यादा हिस्सेदारी गौतम अडानी की कंपनी की हो जाएगी। भारत बायोटेक ने बुधवार को कहा कि उसने अपनी रोटावायरस ओरल वैक्सीन रोटावेक को नाइजीरिया में पेश किया है। ये वैक्सीन बच्चों को जानलेवा डायरिया बीमारी से बचाती है। इस समय रोटावायरस से दुनिया में होने वाली मौतों में नाइजीरिया की 14% हिस्सेदारी है। नाइजीरिया में हर साल 5 साल से कम उम्र के करीब 50,000 बच्चों की मौत रोटावायरस संक्रमण के कारण होती है। भारत बायोटेक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कृष्णा एला ने बयान में कहा, हम विकासशील देशों में बच्चों के बीच संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध हैं। और अफ्रीकी महाद्वीप में नाइजीरिया जैसे देशों में बच्चों तथा कमजोर आबादी के लिए किफायती दवाओं की पेशकश कर रहे हैं। ये वैक्सीन अब एशिया, अफ्रीका, लातिनी अमेरिका और पश्चिम एशिया के कई देशों में उपलब्ध है। कर्ज में डूबी फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड को परिचालन से जुड़ा ऋण देने वाली एक इकाई ने एनसीएलटी में याचिका दायर कर कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया। फ्यूचर एंटरप्राइजेज के खिलाफ हालिया याचिका रिटेल डीजल्स इंडिया ने एनसीएलटी की मुंबई पीठ में दायर की। इसमें कंपनी पर 4.02 करोड़ रुपए की चूक का आरोप लगाया गया है। फ्यूचर एंटरप्राइजेज ने मंगलवार शाम को शेयर बाजार को ये जानकारी दी। इसमें कंपनी ने कहा कि एनसीएलटी में ई फाइलिंग से इस तरह के आवेदन की पुष्टि हुई है। परिचालन के लिए कर्ज देने वाली रिटेल डिटेल्स इंडिया प्राइवेट ने ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता IBC की धारा 9 के तहत 4.02 करोड़ रुपए की कथित चूक का दावा करते हुए आवेदन दिया है। इसमें बताया गया कि मामले पर सुनवाई के लिए अभी कोई तारीख नहीं दी गई है। पिछले हफ्ते कंपनी को परिचालन संबंधी कर्ज देने वाली फोरसाइट इनोवेशन ने समान धारा के तहत आवेदन देकर 1.58 करोड़ रुपए की कथित चूक का आरोप लगाया और एनसीएलटी की मुंबई पीठ में आवेदन दिया गया था। इस मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 26 अगस्त 2022 है। रियल्टी क्षेत्र की कंपनी ओमैक्स को दिल्ली विकास प्राधिकरण से राष्ट्रीय राजधानी के द्वारका में एक खेल परिसर एवं खुदरा परियोजना के विकास का ठेका मिला है। इस परियोजना की लागत 2,100 करोड़ रुपए है। कंपनी को ये परियोजना DDA के डिजाइन निर्माण वित्त एवं परिचालन मॉडल के तहत मिली है। इसमें 50 एकड़ क्षेत्र में आउटडोर और इंडोर खेल सुविधाएं बनाई जाएंगी। एक बड़ा क्रिकेट सह फुटबॉल स्टेडियम बनाने की भी योजना है और इनके अलावा खुदरा क्षेत्र भी विकसित किया जाएगा। कुल निवेश लगभग 2,100 करोड़ रुपए का होगा, जिसमें से 1,300 से 1,400 करोड़ रुपए खेल परिसर पर और बाकी की राशि खुदरा क्षेत्र पर खर्च की जाएगी। ओमैक्स लिमिटेड के चेयरमैन रोहतास गोयल ने कहा, हमें DDA से एक परियोजना मिली है जिसे द्वारका में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा, हम विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम और खेल परिसर बनाएंगे जो वैश्विक मानकों पर खरा उतरेगा। DDA की खेल परिसर की ये ऐसी पहली परियोजना होगी जिसे वह सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत विकसित करेगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान से जरूरतमंद और प्रतिभाशाली छात्रों को संस्थान में पढ़ाई में मदद करने के लिए छात्रवृत्ति शुरू करने के लिए कहा है। गोयल ने मंगलवार शाम यहां IIFT के 55वें दीक्षांत समारोह में कहा कि यह छात्रवृत्ति सुनिश्चित करेगी कि कोई भी प्रतिभाशाली और योग्य छात्र शुल्क या यहां रहने के खर्च के कारण संस्थान में पढ़ने से निराश न हो। उन्होंने कहा कि ये कदम देश के सभी हिस्सों में छात्रों को लाकर परिसर में अधिक विविधता लाने में मदद करेगा। गोयल ने IIFT बोर्ड से सभी परिसरों को अधिक जीवंत और अद्यतन बनाने के लिए छात्र परिषदों को अधिक धनराशि देने पर विचार करने का भी आग्रह किया। नकदी संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए चॉकलेट, परफ्यूम और शैम्पू जैसी 300 उपभोक्ता वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दी है। श्रीलंका वर्ष 1948 में अपनी आज़ादी के बाद से सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। देश में विदेशी मुद्रा संकट के कारण आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई है। श्रीलंका के वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी एक विशेष अधिसूचना में चॉकलेट, परफ्यूम, मेकअप और शैम्पू समेत कुल 300 उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है। जर्मनी की लग्जरी कार कंपनी मर्सिडीज बेंज ने उम्मीद जताई है कि अगले 5 साल में भारत में उसकी कुल वाहन बिक्री में 25% हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की होगी। कंपनी की भारतीय इकाई मर्सिडीज बेंज इंडिया देश में अपनी इलेक्ट्रिक वाहन यात्रा में तेजी लाने की रणनीति के तहत अगले 4 महीने में 3 इलेक्ट्रिक वाहन उतारेगी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।